हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अबीर राठौड़ जोया से बात करने और उसके बारे में सच्चाई जानने के लिए अकरम के साथ उसके फ्लैट पर गया था। वहां जाकर रिया ने उन्हें बताया कि जोया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। उसने कहा था कि उसे कोई भी परेशान न करे, लेकिन अकरम ने जोया के कमरे की चाबी अबीर को दे दी और कहा, तुम जाओ और उससे बात करो, लेकिन उसका दिल दुखाने की बिल्कुल मत सोचना। अबीर वाकई अकरम का शुक्रगुजार था। वहीं दूसरी ओर अरहम चांदनी और राजा से अपने किए की माफ़ी मांगकर उन्हें एक होटल गाड़ी देकर अमेरिका के लिए रवाना हो गया था। वहीं अकरम जोया के कमरे की चाबी अबीर को देकर रिया को लेकर दूसरे कमरे में चला गया। रिया ने अकरम से कहा, ये क्या किया तुमने? क्यों उस अबीर राठौड़ को यहाँ लाए? तुम अच्छे से जानते हो जोया उसे पसंद नहीं करती है, और वो उससे तो क्या, मुझे नहीं लगता किसी भी मर्द से शादी करने का सोच भी सकती है। अकरम ने कहा, मुझे पता है, तभी तो अबीर को मैंने उसके पास भेजा है बात करने के लिए। देखो रिया, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अबीर की बात सुनकर या तुम्हारी बात सुनकर या जोया की बात सुनकर फ़ैसला कर लूँ। मैं एक पुलिस वाला था और मेरी दूर की सोच तुम लोगों की सोच से कहीं आगे है। अबीर राठौड़ कोई मामूली इंसान नहीं है, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो क्यों न हम लोग उससे न लड़कर उसके साथ लड़ें? रिया ने कहा, मतलब? अकरम ने समझाया, मतलब ये कि ये अबीर राठौड़ हमारे बहुत काम आ सकता है। अगर उसका प्यार वाकई सच्चा है ना, तो वो हमारी मदद कर सकता है उन वहशी दरिंदों से बदला लेने में। और रिया, मैं जोया को एकदम सेफ करना चाहता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि वो मेरे साथ सेफ नहीं है, लेकिन मैं कब तक उसकी हिफाजत कर सकता हूँ? एक ना एक दिन तो उसे किसी की ज़रूरत होगी ना, जो उसका मरते दम तक साथ निभा सके। उसे भी खुश रहने का, अपना घर परिवार बसाने का हक है। और तुम ही सोचो, जिस इंसान के सामने पूरा शहर झुकता है, वो इंसान मेरी बहन के लिए मेरे सामने भी झुक गया, तो ज़रूर कुछ ना कुछ सच्चाई तो है उस बंदे में। इसलिए मैं चाहता हूँ वो खुद जोया से बात करे। अगर वो उसे अपने प्यार का यकीन दिला पाता है तो बहुत अच्छी बात है। तब मैं खुशी खुशी उन दोनों की शादी करा दूंगा। और तुम ही बताओ, आखिर जो कुछ भी हुआ उसमें उस बेचारी की क्या गलती है? जोया ने तो कोई गलती नहीं की, उसे तो उस चीज़ की सज़ा मिली है जो उसने किया भी नहीं था। रिया अकरम की एक एक बात समझ गई थी। रिया ने कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो, और वैसे भी तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे तो ये अबीर राकार शुरू से ही बहुत पसंद है। जैसे ही रिया ने ये कहा, अकरम उसे कड़ी नज़रों से देखने लगा। तब रिया बात पलटते हुए बोली, मेरा मतलब था जोया दी के लिए, अपने लिए नहीं, मेरे लिए तो तुम हो ना, उसने बच्चों वाली शक्ल बनाते हुए कहा। और रिया के इस भोलेपन पर अकरम अपनी हंसी नहीं रोक पाया और जोर जोर से हंसने लगा। उसने रिया को बाहों में भरकर खूब लाड़ प्यार करना शुरू कर दिया। वहीं अबीर ने धीरे धीरे जोया के कमरे का लॉक खोलना शुरू किया, और दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर गया, उसने देखा जोया ऊंधे मुंह बिस्तर में पड़ी थी और उसने अपना मुंह छुपा रखा था। अबीर धीरे से उसके पास गया और उसके बेड पर थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ बैठ गया और कुछ देर तक उसे यूं ही देखता रहा। तब अबीर ने अपना एक हाथ उसके बालों पर रखना चाहा, वो उसका सर सहलाना चाहता था, लेकिन उसने अपना बढ़ाया हुआ हाथ पीछे खींच लिया और जानबूझकर अपना गला खराशने लगा। किसी के खर खर की आवाज़ सुनकर जोया चौंक गई और हड़बड़ी में जल्दी से उठी और दरवाजे की ओर देखने लगी, लेकिन दरवाजे पर तो कुंडी लगी थी। जोया ने सोचा, अभी तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी थी, फिर अचानक से वो चुप हो गई। जोया को नहीं पता था कि अबीर राठौड़ बिल्कुल उसके पीछे बैठा हुआ था। जैसे ही जोया अपना सिर झटक कर पीछे मुड़ी और जैसे ही वो एक झटके से पीछे मुड़ी, उसके होंठ अबीर के होंठ से छू गए थे। जोया की आंखें हैरानी से एकदम बड़ी बड़ी सी हो गई थीं और वो अपने होंठ ऐसे ही रखे हुए उसे देखती रहीं। कुछ सेकंड तक उन दोनों की सांसें आपस में टकराती रहीं, और फिर जैसे ही जोया को थोड़ा एहसास हुआ कि उससे क्या हो गया है, वो एक झटके से अबीर से अलग हो गई और गुस्से से एकदम बेड से खड़ी हो गई। अबीर की ओर घूरते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम में आने की? और ये अकरम भाई कहाँ हैं? उन्होंने कैसे आने दिया तुम्हें यहाँ? ऐसा कहकर ज़ोया जोर जोर से चिल्लाने लगी, भाई भाई भाई। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका मुंह बोला भाई और भाभी इस वक्त इश्क फरमा रहे थे और एक दूसरे से लिपटे हुए थे। अबीर तो अभी खोया हुआ था उसमें, जो ज़ोया के साथ उसका पहला एक्सीडेंटल किस हुआ था। अबीर तो अभी ज़ोया के उसी खूबसूरत एहसास में ही खोया हुआ था। तब ज़ोया अबीर को अपनी ओर यूं देखते हुए सिकुड़ गई और गुस्से से बोली, ऐसे क्या देख रहे हो, तुम जाओ यहाँ से, निकलो मेरे कमरे से। लेकिन अबीर को तो मानो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो, वो तो बड़े ही प्यार से केवल ज़ोया को बोलते हुए देख रहा था, बोलते हुए उसके गुलाबी होंठ और कभी बोलते हुए कभी छोटी तो कभी बड़ी होती उसकी खूबसूरत नीली आँखें। हाय, अबीर तो मानो सब कुछ भूल बैठा था। उसे इस तरह से बैठा हुआ देख और कुछ न बोलता देख ज़ोया बेहद तप गई थी। तो फिर उसने न आव देखा न ताव और एक झटके से अपनी साइड टेबल से पानी से भरा जग उठाया और सीधा अबीर के ऊपर डालना शुरू कर दिया। ज़ोया के इस कदम से अबीर एक पल में ही अपने हसीन ख्वाबों की नींद से बाहर आ चुका था। वो ज़ोया की इस पानी वाली हरकत से नाराज हो गया और गुस्से से उठा। उसने उसके बाल कसकर पकड़ लिए और उसका चेहरा बिल्कुल अपने करीब करते हुए बोला, अगर तुम अबीर राठौड़ की जिंदगी नहीं होती तो अब तक कितनी बार तुम्हारी जान जा चुकी होती, समझी तुम? अबीर ने गुस्से से कहा, ज़ोया तो ले लो ना मेरी जान, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो, समझे तुम? मैं जान दे दूंगी लेकिन किसी आदमी को अपना रखवाला नहीं बनाऊंगी। मैं खुद इतनी काबिल बनूंगी कि मैं अपनी और अपने पेट में पल रहे बच्चे की देखभाल कर सकूं, समझे तुम? अबीर, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, ज़ोया ने एक मजाकिया अंदाज में कहा। ज़ोया, देखिए अबीर साहब, ये प्यार व्यार सब किताब की बातें हैं, इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। मेरी बात मानिए, ये सब प्यार व्यार के चक्कर छोड़ दीजिए और अच्छा खासा स्टार्डम है आपका। यहाँ करीब करीब पूरा शहर ही आपसे डरता है, सर झुकाता है आपके सामने। तो आपकी तो वैसे ही इतनी बढ़िया लाइफ चल रही है, तो क्या जरूरत है आपको इस प्यार व्यार के लफड़े में पड़ने की? ज़ोया बोलते हुए बड़ी ही प्यारी लग रही थी और अबीर को उसका ये अंदाज बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था और वो अपने होठों पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ उसे देखने लगा था। ज़ोया उसे इस तरह से स्माइल करता हुआ देखकर और ज्यादा तप गई थी और तप कर बोली, ओफो, ओहो, एक तो आप बात बात में अपने दांत दिखाना बंद करें, आप हंसते हुए एकदम जहर लग रहे हो मुझे।
उसकी बात सुनकर अबीर ने हंसना बंद कर दिया और उसे कंधों से पकड़ते हुए बोला, मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे। और फिर बोला, तुम्हें पता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे भी प्यार हो जाएगा। तुम जानती हो जिस तरह से तुम्हें मर्दों से नफरत है, ठीक उसी तरह से मुझे औरतों से नफरत है। जब मैं केवल 10 साल का था तब एक औरत ने मेरा घर बर्बाद कर दिया था और उस औरत के लिए मेरे पिता ने मुझे और माँ को छोड़ दिया था और मेरी माँ वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और वो इस दुनिया से चली गई, मुझे उस महल जैसे घर में अकेला छोड़कर। माँ के मरने के बाद मेरा बाप उस औरत को अपने साथ घर ले आया था और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया था। और फिर अंतिम दिनों में भी मरते वक्त उन्हें उसी औरत का ख्याल था। वो इस दुनिया से जाते जाते भी मुझसे वादा ले गए कि मैं उनका ध्यान रखूंगा और देखो मैं रख रहा हूँ उनका ध्यान। जब भी उस औरत को पैसों की ज़रूरत होती है वो आती है और बैग भरकर पैसे ले जाती है और अपनी अय्याशियों में उड़ा देती है। अबीर ने बड़ी ही आसानी से अपना पूरा दिल का दर्द खोलकर ज़ोया के सामने रख दिया था और ज़ोया उसे हैरानी से देखने लगी थी और वो समझ गई थी कि एक 10 साल के बच्चे पर क्या क्या गुजरी होगी। ज़ोया ने एक लंबी सांस ली और बोली, देखिए अबीर साहब, मुश्किलें दर्द हर एक की ज़िंदगी में होते हैं लेकिन उनसे घबराकर हम जीना तो नहीं छोड़ देते हैं ना। और देखिए आपने अपने आप को कितने अच्छे से संभाला है और मैं चाहती हूँ आज भी आप अपने आप को संभालें। मेरा और आपका कोई मेल नहीं है, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। मैं कभी शादी नहीं करूँगी, मेरी ज़िंदगी में शादी प्यार के लिए अब कोई जगह ही नहीं बची है। आप चले जाइए यहाँ से और भूल जाइए मुझे, आपको और कितनी ही अच्छी लड़कियाँ मिल जाएंगी, ज़ोया ने अबीर को देखते हुए कहा। अबीर ज़ोया के करीब आया और उसने अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा भर लिया और बोला, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कोई नहीं, समझी तुम? और हाँ, मेरी तुमसे शादी इसी हफ्ते होगी, बस शादी की तैयारी करो, तुम्हारे भाई के साथ ही हमारी शादी भी होगी। ये सुनते ही जोया की आंखें हैरत से फटी रह गईं और उसके हाथ झटके से हट गए। वो दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें ऊंचा सुनता है क्या? मैंने कहा ना, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, तो क्या तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती है? जोया का इस तरह से मना करना अबीर को एक बार फिर से गुस्सा दिला गया था। वो उठा और उसने जोया को कमर से कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, अगर एक्सीडेंटल किस एक बार हो सकता है तो माय लाइफ में एक्सीडेंट तो जिंदगी में बार बार होते ही रहते हैं, तो फिर उनसे क्या डरना।